नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका के प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने और उन्हें सशक्त बनाने का निर्णय लिया। हरियाणा के विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समितियों की बैठक में 1645 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुओं की खरीद व ठेकों को मंजूरी दी गई। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि बहुत जल्द अम्बाला छावनी के लघु सचिवालय में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा बीपीएल परिवारों की श्रेणी में बिजली बिल को लेकर 12,000 रुपए प्रतिमाह की शर्त हटाने से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए एथलीटों की सराहना करेंगे और भविष्य में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रम में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के एथलीट, उनके प्रशिक्षक, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। काबिले गौर है कि भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते हैं। जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों तथा 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों की कंप्यूटरीकरण योजना की तर्ज पर 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर और सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि एक केंद्रीय निगरानी इकाई की स्थापना की जाएगी जो इस योजना के सफल कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करेगी। इस योजना पर कुल 225 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के कार्यान्वयन से न केवल राज्यों के सहकारी विभागों तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी बल्कि इन कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता एवं एकरूपता भी आएगी, जिससे ये अधिक कारगर तरीके से काम कर पाएंगे और इससे समय की भी बचत होगी। आयुष्मान भव अभियान के तहत एक महीने से भी कम समय में 3 लाख से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पहले सालाना केवल 9 लाख यूनिट रक्त एकत्रित होता था। स्वास्थ्य मंत्री ने मानवता की सेवा के लिए सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 1645 करोड़ रुपए से अधिक के ठेकों तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से भावतोल करने के बाद दरें तय करके लगभग 29 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। उच्च अधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति की बैठक में हरियाणा पुलिस आवासीय निगम द्वारा हिसार की पुरानी पुलिस लाइन टाइप 2 के 48 तथा टाइप 3 के 24 3 मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 KVA ट्रांसफार्मर की खरीद, शुगर फेड के लिए पीपी बैग, भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी ठेकों को मंजूरी दी गई। साथ ही 2000 लीटर क्षमता की 36 सीवरेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई ताकि इससे छोटी गलियों में जाकर सीवरेज की सफाई सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? अपने उत्तर news@chda.gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद मित्तल का असली नाम राम प्रसाद सिंह तोमर था। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं हरियाणा के फरीदाबाद से महेंद्र टागर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बहुत जल्द अम्बाला छावनी के लघु सचिवालय में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा भगत सिंह की प्रतिमा तैयार कर ली गई है। आज गृहमंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ प्रतिमा स्थापित करने की जगह निर्धारित की। श्री विज ने बताया कि सचिवालय में जिस स्थान पर प्रतिमा लगेगी वो स्थान बाहर अलग अलग दिशाओं से वाहन चालकों को आसानी से नजर आ सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि प्रतिमा के समक्ष काफी खाली स्थान है और किसी आयोजन के दिन यहां सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रतिमा के पीछे दीवार पर देश का नक्शा बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री विज ने बताया कि नगर परिषद द्वारा प्रतिमा के लिए नीचे आधार तैयार किया जाएगा, बाद में प्रतिमा को इस पर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में बिजली बिल को लेकर 12,000 रुपये प्रतिमा की शर्त हटाने से गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज जगाधरी में लोगों की समस्याएं सुनने के मौके पर श्री कंवरपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों की भलाई व जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं लागू कर रही है और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता के साथ साथ लोगों को योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है जिससे मेहनत करने वाले युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है। इसके अलावा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करके नौकरी देने में पारदर्शिता लाई गई है। श्री कंवरपाल ने कहा कि समाज के वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए बिना सरकारी नौकरी वाले परिवारों के उम्मीदवारों को नौकरी के लिए अतिरिक्त 5 अंक प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने यमुनानगर व अन्य जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। हरियाणा में धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि अनाज मंडी से अब तक 6,04,000 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है। मार्केट कमेटी के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 4,12,000 क्विंटल धान का उठान हो चुका है। धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और खरीद होते ही किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उधर पंचकुला जिले की 3 मंडियों में अब तक 42,433 टन धान की खरीद होने की खबर है और 35,091 टन धान की खरीद का उठान भी कर लिया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हैफेड द्वारा पंचकुला बरवाला व रायपुर रानी अनाज मंडी से 2,400 टन धान का उठान किया गया है। फतेहाबाद जिले में विभिन्न दिव्यांग जन शिविरों के माध्यम से पंजीकृत किए गए 536 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत अनुसार सहायक उपकरण दिए जाएंगे। फतेहाबाद के उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह तोमर ने बताया कि दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले उपकरणों पर 1,10,80,000 से अधिक राशि खर्च होगी जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण खरीदने बारे एडिप योजना के अंतर्गत वहन की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने और उन्हें सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।